الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے وقالوا ما في بطون هذه الانعام اور وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے هذه الانعام ان مویشیوں کے پیٹ میں خالصۃ لذکورنا اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھائیں گے ومحرم علی ازواجنا اور یہ حرام ہے ہماری عورتوں پہ وان یکم میتتن اور جو بچہ مردہ اس میں سے پیدا ہوگا فہم فیہ شرکاء تو کھانے میں سب برابر ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ تو سزا دے گا ان کو ان کی تقریروں کی اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور وہ حکمت والا ہے جاننے والا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں مشرکین کا تذکرہ اور مشرکین کی بدعتوں کا تذکرہ ہے۔ پچھلی آیت میں بھی مشرکین کی بدعت کا تذکرہ تھا کہ ایک بدعت انہوں نے یہ گھڑی تھی کہ جی کچھ مویشی اور کچھ کھیتی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف اللہ کے لیے ہیں، ان کو کچھ نہیں کھانا، یہ نیکی کا کام ہے، ان کو ٹچ نہیں کرنا، اور جن کو ہم چاہیں گے وہ اس میں سے کھا سکیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کچھ جانوروں کی پیٹھ پہ سواری نہیں کرنی، اور کچھ کے بارے میں کہا کہ جی ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا۔ اب یہ گھڑی ہوئی چیزیں، نئی چیزیں جو انہوں نے پیدا کی، اور یہی بدعات ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی اصل دین میں نہیں ہوتی اور لوگوں کے سامنے اس کو نیکی کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہوتے ہیں نا گناہ، جو انسان ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ گناہ ہے، جیسے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، تو یہ کسی کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ایک وہ گناہ ہوتے ہیں کہ لوگ یا جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں نیکی کے طور پہ، اور اصل میں وہ نیکی نہیں ہوتی بلکہ وہ گناہ ہوتے ہیں، لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہیں، اسی کو بدعات کہا جاتا ہے۔ تو پچھلی مرتبہ کلاس میں بدعات کے اوپر کچھ گفتگو بھی ہوئی تھی، آج کی اس آیت میں بھی ان مشرکین کی ایک اور بدعت بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور وہ بدعت کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں مشرکین کہ جو کچھ ہمارے مویشیوں کے پیٹ میں ہے اس کو تو ہمارے مرد ہی کھائیں گے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے یہ حرام ہے، ہاں اگر اس میں سے کوئی مردہ چیز پیدا ہو گئی پھر اس میں دونوں برابر ہیں، دونوں کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جھوٹ اور اس بدعت اور اس گھڑی من گھڑت چیز جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تقریروں کی سزا دے گا، یعنی اس جھوٹ پر سزا دے گا۔ تو اس مبارک آیت میں ایک اور بدعت بیان کی گئی ہے۔ بدعت کی تعریف علماء نے یہ فرمائی कि ये जो बिदअत होती है ये वो चीज़ है जिसकी कोई असल कुरान और हदीस में मौजूद नहीं, और बिदअत वो चीज़ है कि जिसको करने पर नबी अलैहि सलातो वसलाम और उनके सहाबा कादिर थे, जिस सही काम को भी जिनको लोग अब सही समझते हैं उन चीज़ को करने पे कादिर, मगर उन्होंने वो काम तर्क किया। अब अगर कोई शख्स कहे कि नहीं नेकी लगती है इसको कर लेना चाहिए, तो वो बिदात होता है। मिसाल के तौर पे जो हदीस से पाक को जमा करना जो है, उस वक्त जिस अंदाज में जिसको याद रह गई उसने याद कर लिया, जिसको और तरह से किसी चीज पे किसी लकड़ी पे लिख लिया, मगर जमाने के साथ साथ पेपर अवेलेबल हो गया, बाइंडिंग हो गई, किताबें आ गई, तो अब उसको इस तरह से लिख लिया गया। तो उस जमाने में असबाब ही नहीं थे इस तरह की मॉडर्न जो अब किताबें मौजूद हैं, या अब जो इंटरनेट के ऊपर जो है वो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं। तो इसलिए अगर इंटरनेट पे कोई हदीसें पढ़ता है तो बिदअत नहीं है कि जी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तो इस तरह नहीं किसी ने पढ़ी। तो बिदअत जो है उसकी तारीफ ये है कि जो चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का तذکرہ नहीं फरमाया और उसको तर्क किया अल्लाह के नबी ने उनके सहाबा ने, उसको बिदअत कहा जाता है। इस बिदअत के बारे में कुछ सवालात बाद में भी आए हैं कि बिदअत सय्यिअ और बिदअत हसना, इसके ऊपर कुछ बयान करें। तो इस बिदत सय्यिअ और बिदत हसना की डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह कोशिश होगी अगली क्लास में आपको दे दिए जाएं, इसके ऊपर काम जारी है। इस मुबारक आयत को अगर गौर से देखेंगे तो इससे इसमें दो चीजें इन मुशरिकीन की नजर आती हैं। एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस नजर आती है और इसका तذکرہ अल्लाह ने भी फरमा दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाए सैयद जिजीम वसम, इनकी जो जबानों से निकल रहा है ना, इसके ऊपर हम इनको सजा देंगे, जजा जरूर देंगे। तो पहली चीज तो ये कि ये झूठ है, और दूसरी चीज थोड़ी सटल है, यानी थोड़ी जाहिर नजर नहीं आ रही, मगर दूसरी चीज इससे भी ज्यादा मोहलिक, झूठ से भी ज्यादा बड़ी चीज और बड़ा गुनाह। और वो क्या कि इस मुबारक आयत से ये पता चलता है कि इन मुशरिकीन के जो बड़े थे वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। यानी उनको कुछ लोग मिल गए जो उनकी बात मानते, तो अब उन्होंने उनको झूठ बोलकर उनको अपनी बात मनवाना जो है उसको सही समझना शुरू कर दिया। तो ये ताकत का बेजा इस्तेमाल होता है, इसको तकब्बुर भी कहते हैं। और जब इंसान ऐसे करता है ना कि उसके पास ताकत होती है क्योंकि लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं, और वो इस ताकत के जोम में आके लोगों को किसी गलत चीज पे लगा देता है, तो हदीस पाक में ऐसे बंदे का तذکرہ आया है कि जिसने कोई अच्छी चीज शुरू की, जितने लोग वो अच्छी चीज करेंगे उसके पीछे तो उसी उसको उसका अजर मिलेगा, और जिसने कोई बुरी चीज नई शुरू कर दी, जितने लोग वो बुरी चीज करेंगे सारा का सारा जो उसके जो सजा है और उसका सारा का सारा अजर उसके शुरू करने वाले को भी मिलेगा। तो कई मर्तबा बहुत सारे लोग आपके पैरोकार हो जाते हैं, तो इंसान ये जुर्रत कर लेता है मनगढ़ंत चीजों को शुरू करने की, गलत बातों को शुरू करने की, या ताकत का मुजाहरा करने के लिए। लोग ताकत को इंजॉय करते हैं, इसलिए एक बड़ी दीनी जमात के अमीर, उन्होंने अपने सारे पैरोकार को कहा कि जो मेरा दीन मजहब जो मेरी किताबों से जाहिर है इस पर मजबूती से कायम रहना तुम्हारे लिए हर फर्ज से ज्यादा अहम फर्ज है। अल्लाह, यानी जो चीजें मैं सिखा रहा हूं वो फराइज से भी ज्यादा जो है वो बड़ा फर्ज है। तो ये जब इंसान के कुछ पैरोकार जमा हो जाते हैं तो ये तकब्बुर जाहिर होने लगता है। तो सिर्फ ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, इस आयत से सिर्फ झूठ नहीं नजर आ रहा, बल्कि एक और चीज, इंसान जो है ताकत को बेजा इस्तेमाल कर रहा है, तकब्बुर का इजहार कर रहा है, अपने बड़े होने का गलत फायदा उठा रहा है। अंग्रेजी में एक मकूला है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि जो ताकत है इंसान को बदउनवान बना देता है, मगर पूरी ताकत जब आ जाती है तो इंसान पूरी तरह से बदउनवान बन जाता है। फिरौन ने जो खुदाई का दावा किया और कहने लगा अना रब्बकुम रब्बकुमुल आला, अना रब्बकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा रब हूं आला, जो खुदाई का दावत किया, इसलिए ना ताकत थी। हमारे मशाइख ने फरमाया कि अगर इसका पेट भरा हुआ ना होता तो कभी ये खुदाई का दावा ना करता, यानी कमजोरी होती, ताकत पूरी तरह से ना होती तो ये वाली बात वो ना करता। तो अल्लाह के नजदीक अगर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप बड़े कोई पेशवा हैं या बड़े कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, अल्लाह के नजदीक आपकी वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो वैल्यू है वो है तकवा, खौफ खुदा, अल्लाह से डर जाना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे इज्जत वाला, अल्लाह की नजरों में सबसे बड़ा जो है ना, वो तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला, सबसे ज्यादा आजी करने वाला जो है वो तुम में सबसे ज्यादा बड़ा है। जो आसानी से गुनाह ना करे, हर वक्त डरता रहे मेरे से गलती ना हो जाए कहीं, जो यूं कहे, वो अल्लाह के यहां बहुत बड़ा दर्जा रखता। और हमारे अकाबरीन इस तरह थे, क्या शांति। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अमीरुल मोमिनीन 10 लाख स्क्वायर मील पर, 10 लाख स्क्वायर माइल्स पर इस्लामी हुकूमत पहुंच गई, यानी हजरत उमर के दौर में इस्लामी हुकूमत जो है अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप तक पहुंच गई। मगर हजरत उमर रजी अल्लाह उन्हों का हाल ये कि उनको पता था, उनको नबी अलैहि सलातो सलाम ने मुनाफिकीन के नाम बताए थे। आप एक दिन उनके घर पे चले गए और जाके कहा कि मेरे भाई, मुझे पता है अल्लाह के नबी ने तुझे मुनाफिकीन के नाम बताए हैं, और मुझे ये भी पता है, ये भी पता है कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है कि किसी को नहीं बताना, तो मैं तुझसे नाम पूछने नहीं आया, एक गुजारिश लेके आया हूँ, बस मुझे इतना बता दे कि कहीं मेरा नाम तो उन मुनाफिकीन में नहीं है। अल्लाह अकबर, इसको कहते हैं खौफ खुदा, इसको कहते हैं कमाल खौफ खुदा। यानी एक तरफ आप अमीरुल मोमिनीन हैं, दुनिया लरजती है आपके नाम से, मुसलमान हो या काफिर हो, और इतना जाहो जलाल, और दूसरी तरफ जो है अल्लाह अकबर, आप जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस सहाबी को कि मुझे बता दे मेरा नाम तो कहीं नहीं है मुनाफिकीन में। तो हमारे अकाबरीन ने तकवा को पकड़ा, अल्लाह से डरने को पकड़ा, आजजी को पकड़ा। तो इस मुबारक आयत में जो चीज नजर आ रही है कि ठीक है जी, मेरे पैरोकार हैं ना इतने सारे, तो मैं इनको गलत चीज पे लगा देता हूं और उनको फोर्स करूंगा कि यही सही है। तो इस मुबारक आयत से झूठ भी नजर आता है जो बड़ा ऑब्वियस है, मगर इस मुबारक आयत से तकब्बुर भी नजर आता है जो सटल है, बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है। और ये तकब्बुर जब आपके पीछे पैरवी करने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, मुरीदीन ज्यादा हो जाते हैं, तो कई मर्तबा ये तकब्बुर आ जाता है। टेक्सिला में एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जियारत के लिए हम 2-3 दोस्त पहुंचे हजरत के पास गए, तो अल्लाह वाले बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्गों से उनको निस्बत भी थी, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे और बड़े खुलफा में से थे, और अब उनका भी इंतकाल हो गया, तो हम हाजिर हुए हजरत के पास और हम दो तीन दोस्त थे और हमने हजरत का हाथ चूमा, तो हजरत ने फरमाया कि ना चूमो ये हाथ, ये पीरों को खराब करने वाली चीज है। कि कई मर्तबा इंसान के दिल में आ जाता है कि मैं बड़ा बन गया हूं, तो लोग ज्यादा पैरोकार हो जाते हैं तो इंसान कई मर्तबा मुतकब्बिर हो जाता है, देखने में बड़ा दीनदार लगता है मगर उसके अंदर तकब्बुर कूट कूट के भर जाता है। वो अपनी मिजाज के खिलाफ बात को भी पसंद नहीं कर सकता, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी पसंद नहीं करता है। तो अगर टेस्ट करना हो कि मेरे अंदर तकब्बुर है या नहीं है, इसका बेस्ट टेस्ट ये है कि कोई हमें अगर कहता है कि तुमने ये चीज गलत की, तो हमारी तबीयत उस पर कैसे रिएक्ट करती है? क्या हमें गुस्सा आता है या क्या हम कहते हैं कि भाई इसने जायज बात की है, मैं कोई खुदा खुदा ना खास्ता तो नहीं हूं, नाउज बिल्ला, तो मैं भी गलती कर सकता हूं, अगर किसी ने गलती का कहा है तो हो सकता है गलती हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, ऐसे मुख्तलिफ बर्रे आजम में हुकूमत है, पावरफुल उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर बेहतरीन इस्लामी दौर समझा जाता है, और आप आके मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और एक बंदे ने बस बीच में से खड़े होके कहा कि अभी बात शुरू नहीं होगी जब तक कि आप नहीं बताएंगे कि आपके जिस्म पे जो कपड़ा है वो ज्यादा लग रहा है। क्या मतलब? थोड़े दिनों पहले हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहीं से कपड़ा आया और सारे सहाबाए कराम को इक्वली तकसीम किया, तो सवाल पूछने वाले ने कहा कि इतने कपड़े में आपका पूरा सूट बन नहीं सकता था, तो आपने तो पूरा सूट पहना, इसका मतलब है हम सबको थोड़ा कपड़ा दिया है और खुद ज्यादा कपड़ा लिया है, इसका जवाब पहले दें फिर आपकी बात सुनेंगे। अब बादशाह वक्त को, अमीरुल मोमिनीन को, इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत, खलीफा राशिद जो हैं, नबी अलैहि सल्लत व सलाम के मजार में जो अब सो रहे हैं, इतनी तारीफें अल्लाह के नबी ने की कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, ऐसे बंदे को जो रूहानी तौर पे भी बड़ा और जो खलीफा मोमिन बादशाह भी है, उसको कह दिया यदि पहले जवाब दें इतना सारा कपड़ा कहां से आ गया आपके पास कि आपका पूरा सूट बन गया, तो जरा भी गुस्सा ना हुए, नाराज ना हुए, बल्कि आपने एक्सप्लेन किया कि जी कपड़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं जितना कपड़ा सब में तकसीम हुआ है उसमें मेरा सूट नहीं बन सकता था, मगर मुझे भी मिला और मेरे बेटे को भी एक कपड़ा मिला, तो हम उन दोनों कपड़ों को मिला के मैंने अपना सूट बना लिया। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ा टेस्ट होता है कि इंसान के अंदर ये तकब्बुर आ गया, फिरौनियत जिसको कहते हैं, ये आई है या नहीं आई है। जब कोई क्रिटिसाइज करता है, जब कोई हमारे ऊपर सवाल उठाता है, और आज की औरत को तो अगर शौहर कह देना कि भाई नमाज में गफलत ना करो, तो आगे से जवाब बुक देती है कि पहले अपनी बहन को सीधा कर फिर मुझे सीधा कर। अल्लाह अकबर। तो कई मर्तबा ये बड़ा टेस्ट होता है। तो चंद निशानियां उलमाए कराम ने बताई कि जिससे पता चल जाता है कि जी अंदर ये फिरौनियत है या नहीं है, और पहली निशानी ये है कि जिसके अंदर फिरौनियत होगी वो अपनी क्रिटिसिज्म कबूल नहीं करेगा। यही तो फिरौनियत है। वो कहता अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं रब हूं, नाउज़ बिल्ला। क्यों ऐसे कहता है वो कि अब किसी को मेरी किसी चीज पर क्रिटिसाइज करने की इजाजत ही नहीं है। तो जब इंसान बहुत मुतकब्बिर हो जाता है तो वो समझता बस कोई मुझे कुछ ना कहे। और दूसरी बड़ी निशानी कि जब इंसान जो है मुतकब्बिर हो जाता है तो वो शोहरत का बड़ा शौकीन बन जाता है। हर वक्त चाहता है कि लोग मेरी तारीफें, तो ये भी बड़ा टेस्ट है। हर वक्त ये चाहें कि मेरी तारीफें हों, मुझे बड़ा समझा जाए, मेरी मशहूरी हो, ये शौक जो है ये भी फिरौनियत वाला शौक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, अल्लाह ताला उसे आखिरत में जिल्लत का लिबास पहनाएंगे। तो ये बड़ी निशानी है, फिरौनियत की बड़ी निशानी। तो चार बड़ी निशानियां, ये पांच बड़ी निशानियां जो अकाबरीन ने बताई, उसमें पहली निशानी ये कि कोई अगर हमारे बारे में किसी तरह की भी क्रिटिसिज्म करेगा, तनकीद करेगा, गुस्सा फौरन आ जाएगा। और दूसरी बड़ी निशानी यह है कि इंसान जो है शोहरत का बड़ा शौकीन होगा, बस किसी तरह से मैं मशहूर हो जाऊं, किसी तरह से लोग तारीफें कर दें बस मेरी। तो कई मर्तबा नेक लोगों को भी ये शौक होता है कि जी लोग मेरी गुफ्तगू सुन के अश अश करें, लोग जो हैं वो खूब मेरी गुफ्तगू पर रोएं, तो गो के अल्लाह से मिलाने वाली गुफ्तगू करने का इरादा रखता है, मगर दिल की ये ख्वाहिश है कि लोगों के दिलों पे वो असर हो कि तारीफ किए बगैर रह न सके। तो तारीफ सुनने का जो ख्वाह है उसमें भी फिरौनियत बड़ी जिंदा है। इसीलिए हमारे अकाबरीन नेक आमाल करते भी थे और साथ साथ डरते भी थे। चुनाचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल है, आप दुआ कर, आप अपने असहाब को फरमाते थे कि काश के मैं किसी घास का तिनका होता, काश के मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, और काश के मेरी माँ ने मुझे जना ना होता। हर रोज रात को अल्लाह से दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं तेरा जलील बंदा हूं। अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला पूरी कायनात के लोगों के लिए आम तजल्ली फरमाएंगे और अबू बकर के लिए खास तजल्ली फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह के महबूब तो ये फरमा रहे हैं और ये अल्लाह से क्या अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह मैं तेरा जलील बंदा हूं। तो जब इंसान होता है तो इंसान झुकता है, और जब फिरौनियत आती है फिर इंसान बस अपने आप को बड़ा समझता है। तो फिरौनियत की एक बड़ी निशानी कि इंसान हर वक्त तारीफें सुनने का शौक रखता है, शोहरत का शौक। तो पांच बड़ी निशानियां, फिरौनियत की पांच बड़ी निशानियां। और पहली निशानी ये कि जिसके अंदर ये तकब्बुर फिरौनियत होती है, तनकीद सुनने की अहलियत ही नहीं रखता है, गुस्से से भर जाता है, गुस्सा नाक पे होता है। और दूसरी निशानी यह कि शोहरत का शौकीन होता है। और तीसरी निशानी यह है कि जिसके अंदर फिरौनियत होती है वो ना बड़ों का अदब करता है ना छोटों पे शफकत करता है। तो जब तबीयत में अदब ना हो बेअदबी दूसरों को बड़ी अच्छी तरह से जलील कर देने की तबीयत हो, हर एक को जुमले कसने की तबीयत हो, ये कई मर्तबा हमारी तबीयतों में ताना देना होता है ना, कि किसी को भी सुकून में ना रहने दिया जाए, उसको हर वक्त क्रिटिसाइज किया जाए, हर वक्त ताना दिया जाए, हर वक्त गलतियां निकाली जाएं दूसरों की, या कोई बड़ा हो तो उस बड़े के सामने बेअदबी की जाए, ना उसकी बात सुनी जाए और ना उसकी खिदमत की जाए और ना उसके लिए अदब के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता और जो हमारे छोटों पे शफकत नहीं करता, वो हम में से ही नहीं है। तो ये ऐसी फिरौनियत वाली चीज है जो इंसान को अल्लाह के नबी के कुर्ब से दूर कर देती है। अगर वाकईतन अल्फाज इस हदीस के देखे जाएं तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हम में से है ही नहीं, मुसलमान ही कहाँ है वो। तो ये बेअदबी भी बड़ी निशानी है फिरौनियत की। और जो आला किस्म के लोग होते हैं, वाकई इंसान होते हैं, वो झुक के रहते हैं। जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के रहते हैं, जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के रहते हैं, सुराही सर निगू हो कर भरा करती है पैमाना। तो जो इंसान होगा वाकई अल्लाह का नेक बंदा होगा, वो झुक के रहेगा, आजिजी करेगा। तो बड़ों की आजिजी करने वाला फिरौनियत से खाली है। तो कई मर्तबा बड़े नाराज हों तो बड़ों को खुद मना लेना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए गलती उसकी गलती मेरी, सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा है उससे माफी मांग ले, अल्लाह के यहां आप बड़े हो जाएंगे। तो अदब जो है वो इंसान को अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा बना देता है। नबी अलैहि सलातु वसलाम फरमाया, अद्दीनु कुल्लुहु अदब, दीन सारा का सारा अदब है। तो फिरौनियत की निशानियां, जब फिरौनियत होती है तो इंसान को तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, जब फिरौनियत होती है तो इंसान चाहता है शोहरत ही शोहरत हर जगह हो, तारीफें ही तारीफें हो, और जब फिरौनियत होती है तो इंसान फिर अपने बड़ों का अदब करना छोड़ देता है, बड़ों को सुनाता है बड़े बड़े अल्फाज सुनाता है, अपने आप को दीन और अल्लाह से दूर कर देता है। और जब फिरौनियत होती है तो इंसान के अंदर से खिदमत का जज्बा खत्म हो जाता है, वो ये समझता है कि जी अब सब मेरी खिदमत करें, मुझे कोई काम ना करना पड़े। और इंसान बस मौके ढूंढ रहा होता कि मैं किसी तरह से काम से बच जाऊं, कोई मेहमान मेरे घर में ना आए, किसी की भी खिदमत ना करना पड़े, कोई बड़ा मेरे करीब भी ना आए, ताकि मुझे कोई काम की ऐसी सूरत हाल पड़े जहां थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़े। ये दर हकीकत इंसान गेम्स खेल रहा होता, मगर ये है फिरौनियत तो तकब्बुर है। جس کے اندر خدمت کا جذبہ زندہ، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی خدمت کو آپ نے پسند فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی مدد میں لگتا ہے، خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ آپ نے جو یہ پیدا کر لیا ہے اپنے اندر کہ بس مجھے کسی کا بھی کوئی کام نہ کرنا پڑے، زندگی کی سیٹ اپ ایسا بن جائے، تو شاید کامیاب تو ہو جائیں گے آپ زندگی کا سیٹ اپ ایسا بنانے میں کہ کسی کا کوئی کام نہ کرنا پڑے، مگر اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے دور کر لیں گے۔ اپنے آپ کو آپ اچھے لوگوں کی فہرست سے نکال دیں گے۔ حضرت قاری تقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اندر کی کیفیت عرض کی کہ حضرت اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا، اتنے بڑے مدرسے کا پرنسپل ہوں، اللہ نے مال بھی بڑا دیا ہوا ہے، اللہ نے عزت اتنی دی ہوئی ہے کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی مجھ سے ملتے ہوئے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بھی بڑی خوبصورت دی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کبھی کبھی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہوں، تو حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ اندر سے بڑے پن کی جو یہ جو خواہش ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ عالم دین تھے، بڑے خاندان سے تھے، تو اس چیز کو غلط سمجھتے تھے، مگر اپنی اندر کی بات بتا دی کہ میں اپنے آپ کو ایسا بڑا سمجھتا ہوں، تو کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا وظیفہ کوئی نہیں، بس آتے جاتے رہا کرو ہمارے پاس اس خانقاہ میں، اور جب بھی آؤ تو جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہوتے نا باہر، ان کے جوتوں کو سیدھا کر دیا کرو۔ تو خدمت سے فرعونیت ختم ہوتی ہے، خدمت سے عاجزی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بلندیاں دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا میں نے کمال کر لیا اپنے آپ کو خدمت سے بچا کے، کمال کیا کیا آپ نے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ مشائخ نے فرمایا کہ جو خادم بنتا ہے اللہ اس کو مخدوم بناتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بلندیاں دیتے ہیں۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہم خود تو نہیں کرتے، ہم اپنے قریبیوں کو بھی، بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ذرا بھی، اور فلاں کے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو اگر خدمت گزار نہ بنایا سب کا، تو ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، کل کو جب ہمیں ضرورت ہوگی خدمت کی وہ ہماری بھی نہیں کریں گے۔ تو پانچ بڑی نشانیاں اکابرین نے بتائیں فرعونیت کی۔ ایک یہ کہ کرٹیسزم، تنقید پسند نہیں آتی، جیسے کوئی تنقید کرتا ہے غصہ آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کو شہرت کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور تیسری نشانی انسان بڑی آرام سے دوسرے بڑوں کی بے ادبی کر لیتا ہے، بڑوں کو الٹا سیدھا کہہ دیتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ خدمت کرنے میں بڑی آر محسوس کرتا ہے۔ اور پانچویں اور سب سے اہم نشانی، اور یہ نشانی اللہ کے محبوب نے بتائی، ایک صحابی آئے، اور یہ نشانی کیا کہ یہ نشانی تھی کہ انسان کے اندر سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہے، اس دل کو نرم کرنے کے لیے کیا کروں؟ یعنی وہ شکایت کر رہے تھے کہ دل سخت ہے، دل کے اندر غصہ ہے، تکبر ہے، برائی ہے، تو دل کو نرم کرنے کے لیے کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، دل نرم ہو جائے گا۔ تو اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ جو ہمدردیاں دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اس کی فرعونیت بھی ختم ہو جاتی ہے، جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے اس کی فرعونیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کرتا وہ بڑا کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو کئی مرتبہ 70 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے اندر دوسروں کے درد محسوس کرنے کی حس نہیں ہوتی، لوگ اس کو بچہ ہی سمجھتے ہیں، اور کئی مرتبہ 17 سال کا بچہ ہوتا ہے مگر ہر ایک کے درد کو محسوس کرتا ہے، لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، ہمدردی کرنا، دوسروں کی تکلیف کے اندر دل پہ اثر لینا، یہ بھی انسان کے اندر نیکی، انسانیت کی دلیل ہے۔ اور یہ والی حس کا موجود ہی نہ ہونا یہ نشانی ہے کہ انسان نہیں فرعون ہے۔ تو آج کی یہ جو مبارک آیت ہم نے پڑھی، اس میں دو بڑی چیزیں تھیں۔ ایک تو آبویس نظر آتی تھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، مشرکین جھوٹ بولتے ہیں کہ جی جو بھی جانور پیدا ہوگا وہ جانور جو ہے وہ ہمارے مردوں پہ تو حلال ہے مگر جانور جو ہے وہ عورتوں پہ حلال نہیں ہے، مردہ پیدا ہوگا تو ہاں مردوں عورتوں دونوں کے لیے حلال ہے، تو یہ کیسا جھوٹ۔ مگر اس کے اندر سے جو اصل چیز نظر، جو چھپی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے، وہ تکبر ہے کہ بس ٹھیک ہے اگر ہمارے پیروکار ہیں تو ہم جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیجزیہم وصفہم، ہم ضرور سزا دیں گے ان کو ان کی تقریر کی، جو باتیں کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو تکبر کر رہے ہیں، اس کی سزا ہم انہیں ضرور دیں گے۔ انسان جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ تکبر ایسی بیماری کہ مشائخ نے فرمایا یہ ام الامراض، سارے باطنی بیماریوں کی ماں ہے۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ جس کے اندر تکبر ہوگا اس کے اندر حسد بھی ہوگا، جس کے اندر تکبر ہوگا اس کے اندر غصہ بھی ہوگا، جس کے اندر تکبر ہوگا اس کی شہوت بھی بے قابو ہوگی، جس کے اندر تکبر ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بدگمانی بھی ہوگی۔ ساری باطنی بیماریاں متکبر شخص کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے متکبر شخص کے لیے اعلان کر دیا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ متکبرین سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں آ کے آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ یہ عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور وہ مشرکین کہتے ہیں، ما فی بطون ہذہ الانعام، جو کچھ پیٹ پہ ہیں ان مویشیوں کے، خالصۃ لذکورنا، یہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے یہ جانور کھانا، وان یکن میتتن، اور جو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے جانوروں کا، فہم فیہ شرکاء، تو اس کے کھانے میں ہم سب برابر ہیں، سیجزیہم وصفہم، اور وہ اللہ سزا دے گا ان کو ان کی تقریروں کی، انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے، ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ हरदम अल्लाह अल्लाह कर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, तेरे कदम हो उसकी राह, तेरे कदम हो उसकी राह, तेरा दिल हो उसका घर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बियल आला अल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ व अमलन मुतकब्बला व लिसानन ज़ाकिरा وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.